આત્માનું શાસન લેક્ચર નંબર 68. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય. ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ. નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો વર્ષાયાણં, નમો લોયે સૌવસાહુણં, લક્ષ્મીનિવાસનિલયં, વિલીનવિલયં, નિધાય હૃદિવીરમ્, આત્માનુશાસનમહં, વક્ષે મોક્ષાય ભવ્યાનામ. પૂજ્ય શ્રી ગુણભદ્ર આચાર્ય રચિત યહ આત્માનુશાસન નામક ગ્રંથ હૈ, જિસ પર ક્ષુલ્લક મનોહરજી વર્ણીજી કે પ્રવચન હુએ હૈ. ઓર ઇસ આત્માનુશાસન પ્રવચન દ્વિતીય પુસ્તક હૈ, જિસકો યહાં ચતુર્થ ભાગ કહા હૈ, ઉસકે પૃષ્ઠ સંખ્યા 23 પર હમ આગે 23. નયા પેરેગ્રાફ હૈ, વહાં સે પઢેંગે. સમૃદ્ધિ યહાં સે પઢતે હૈ. ભૈયા અપને આપ કે લિયે જૈસે પૂર્વ ભવ કા સમાગમ, આજ અપને લિયે કુછ નહીં હૈ. કલ બાત યે આઈ થી ના, પહેલે કી યાદ ભી નહીં હૈ ક્યા? ઓર જબ વહાં થે તભી ઉનકે લિયે કિતની ચિંતા આકુલતા હોતી થી. અબ યહાં આયે તો નયે ફિર જુડ ગયે, ઉનકે લિયે ચિંતા કરતે રહેતે હૈ. તો કહેતે પૂર્વ ભવ કા સમાગમ, આજ અપને લિયે કુછ નહીં હૈ, એસે હી ચંદ દિનો કે બાદ ઇસ ભવ કા સમાગમ ભી, ઉસી પ્રકાર વ્યવહાર માત્ર કા ભી કુછ ન રહેગા. વ્યવહાર માત્ર ભી નહીં રહેગા, કુછ નહીં રહેગા ઉસમે. યોગીરાજ જ્ઞાની સંત શ્લાઘનીય હૈ, જો અપને કો માત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપ હી નિહારતે હૈ. શ્લાઘનીય ને ઉનકે તો સ્તુતિ કરને યોગ્ય હૈ. ઓર એસે હી શ્રદ્ધા બનાતે હૈ, જૈસા અભ્યાસ હોતા હૈ વૈસી હી ઇસ જીવ કી પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ. કલ યે બાત આઈ થી ના, જૈસા અભ્યાસ વૈસી પ્રવૃત્તિ. અભ્યાસ કા અર્થ જો હમનારી પ્રેક્ટિસ હૈ, જિસ બારે મેં હમને બારંબાર કિયા હૈ, વૈસી પ્રવૃત્તિ વહી હોતી રહેતી હૈ. પૂર્વ પુણ્ય ઉદયકર ઉદયકરણ ઉદય સે સુખ સંપન્ન ઓર અનુકૂળ સ્ત્રી પુત્રાદિક કે કારણ મહાભાગ પુરુષ સંસાર સુખ સે ભી સુખિયા રહેતે હૈ. ઓર જો ઇસ પ્રકાર કે સુખિયા રહે થે, જ્ઞાન પાને પર જબ વૈરાગ્ય બઢા, સકલ સંન્યાસ કિયા એને મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કી, ઉનકે દૃઢ મન વચન કાય કી સ્થિરતા હુઈ. એને એસે ભી લોગ હુએ હૈ, હો ગયે હૈ કે જો બિલકુલ સુખી જીવન બિતા રહે થે, સભી તરહ સે અનુકૂળતા થી, ઓર જવાની મેં હી એ જ્ઞાન ઓર વૈરાગ્ય એસા હો ગયા તો મુનિ દીક્ષા લેકે નિકલ ગયે. કલ બાત આઈ થી સુકુમાર કી વગેરે કહાની બતાઈ થી ઉન્હોને. જૈસે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર કા વર્ણન કરતે સમય યહ બતાયા ગયા હૈ કે એસી નિશ્ચલ કાયા હો જાતી હૈ કે પથ્થર જાનકર જંગલ કે પશુ ઉસસે અપની ખાજ ખુજાને લગતે હૈ. આત્મધ્યાન કી એસી હી વિચિત્ર મહિમા હૈ. પરમ સુખિયા તો તીર્થંકર ચક્રવર્તી ભી તબ હુએ જબ આત્મજ્ઞાન કે આગ્રહ સે મેરુ પર્વતવત નિશ્ચલ વિરાજે. અપને આપ કે અંતર મેં અપને આપ કે મન કો નિશ્ચલ રખને કા યત્ન કરના ચાહીએ. અને સ્થિરતા સે જ્ઞાન સે અપને આપ કો હી જાનતે રહેના ચાહીએ. દુઃખ કે કારણ કો ખોજ કર દૂર કરના, વાતા ને તાકો તજીએ સુજાન, કે કે વો અપને હી મન મેં અપને હી વિચારો મેં છિપે હૈ કલ્પનાઓ મેં હૈ. और हमारी कहां भूल हो रही है अभिप्राय में, वो अपने ही पकड़ में आ सकती है। यह ज्ञान जिसका निश्चल नहीं रह पाता है, उसके विचल होने का कारण है किसी परपदार्थ से अपना हित और बड़प्पन समझना, यानी रुचि कहीं बाहर पड़ी रहती है, इसलिए उसका ज्ञान अपने में स्थिर नहीं हो पाता। यानी वहां से क्यों हटता है? किसी पर चीज की महिमा है, किसी पर चीज में अपनापन है, उस संबंधी आकुलता है। फिर से पढ़ते इस वाक्य को, देखो। यह ज्ञान जिसका निश्चल नहीं रह पाता है, उसके विचल होने का, अविचल नहीं रह रहा है, यानी विचल हो रहा है, यानी डगमगा रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है? किसी पर पदार्थ से अपना हित और बड़प्पन समझना, उसमें रुचि का होना। जब कभी भी अपने को क्लेश हो, मन की व्यग्रता हो, ये केवल बड़प्पन ही नहीं, ऐसा भी समझना कि कोई शत्रु के विचार आ रहे हैं तो क्यों उसको शत्रु क्यों माना? मैंने अपने को शरीर समझा और किसी चीज में धन से मैं महान हूं, या तो मेरा जो धन चोरी कर रहा है इसलिए उस संबंधी विकल्प आ रहे हैं, इस तरह से उसका अर्थ लेना। यहां हम पृष्ठ 23 पर पढ़ रहे हैं, नीचे का पैराग्राफ। हाँ, कि ज्ञान निश्चल क्यों नहीं है? किसी पर पदार्थ में अपना हित या बड़प्पन समझता है। जब कभी भी अपने को क्लेश हो, मन की व्यग्रता हो, तो बजाय किसी पर वस्तु के विग्रह अनुग्रह करने के, यानी पर पदार्थ का विग्रह अनुग्रह, अनुग्रह ने उसका फेवर, विग्रह ने दूर हटाना, यानी उसमें राग द्वेष, उसके करने के बजाय क्या करना है? एक यह तलाश करना चाहिए कि मैंने किस पर पदार्थ को अपने उपयोग में जो स्थान दिया है उसे खोजो। यानी किसके बारे में बार बार हम चिंता कर रहे हैं या उसी के विकल्प में अटके हैं? अपने तो ख्याल में आते हैं ना कि उसी पदार्थ के बारे में बार बार घूम घूम पर उसी के विचार आ रहे हैं। पर का आश्रय लिए बिना इस जीव को क्लेश हो नहीं सकता। यानी अपने आश्रय से तो सुख ही सुख मिलता है, और ये क्लेश हो रहा है नहीं, किसी पर का आश्रय लिया नहीं, किसी पर में वो अटक गया है। यदि किसी भी पर को अपने उपयोग में स्थान न दिया जाए तो क्लेश का फिर कोई कारण ही नहीं बन सकता। यानी जिस किसी कारण से हम बारंबार पर को ही अपने उपयोग में स्थान दे रहे हैं, ये हो सकता है वो क्या भूल कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, उसे उसी को मुख्य कर रहे हैं, हम तो उसको मुख्य करके उसी के बारे में सोच रहे हैं। यह खोजो अपने आप में कि मैंने किस पर पदार्थ में अपनी मोह दृष्टि की है, वही दुख का कारण है। यानी पर पदार्थ दुख का कारण नहीं, मैंने उसमें अपनी मोह दृष्टि की, चाहे कुछ करना पड़े किसी परिस्थिति में, कैसी भी क्रिया बने, लेकिन कुछ क्षण, कुछ मिनट अथवा कुछ सेकंड ऐसी अपने अंतरंग में स्थिति बनाना चाहिए कि जिस समय किसी भी परद्रव्य के प्रति मोह और अनुराग न जगे, विकल्प न उठे, ऐसी मन की संता करे। अनुराग ने केवल अनुराग ही नहीं, कोई द्वेष भी नहीं उठे, कोई मोह है ना, इष्ट और अनिष्टपना है, तो उसमें किसी के प्रति द्वेष रूप बारंबार विचार हो रहे हैं, किसी के प्रति अनुराग रूप हो रहे हैं, तो वो दोनों ही उतने ही अपने लिए बुरे हैं। क्या कहते हैं? इन्हें थोड़े समय के लिए भी अपने आप में ऐसी स्थिति बनाना चाहिए कि जिस समय किसी भी पर पदार्थ के प्रति मोह और अनुराग न जगे, विकल्प न उठे, ऐसी मन की संता करे जिसके पश्चात यह उपयोग भी समझ जाए। देखो, ये प्रैक्टिस से होगा कि नहीं? जैसे बचपन में हम साइकिल सीखा करते थे, ये बैलेंस तो नहीं आता था ना, इधर रग में उधर रग में, स्थिर वैसे दो ही चाकियों पर चलना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता थी। तो यहां पर भी क्या कहते हैं, थोड़े समय के लिए ऐसा अपना चित्त बनाओ, ऐसी अंतरंग में स्थिति बनाओ कि किसी के प्रति अपने विचार न उठे, पश्चात ये उपयोग भी समझ जाए, यानी अपने अंतरंग में स्थिर होने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, ये कह रहे। ऐसा करना प्रत्येक कल्याणार्थी का कर्तव्य है। धन संचय विशेष होने से आत्मा का कुछ भी पूरा न पड़ेगा, यानी उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला, इन सब समागमों को छोड़कर जाना पड़ेगा। देखो इनको छोड़ना तो है ही, तो अभी से अगर उसके साथ अगर जुदाई हम निश्चित करेंगे तो जब वो छोड़ जाता है तब ऐसा दुख नहीं होगा। पहले में पहले शरीर में से बिल्कुल जुदा है, जब शरीर छोड़ने का प्रसंग आया तो बिल्कुल, क्योंकि जब तक अभी वो वैसे परिणाम चल रहे वैसे अन्य अन्य शरीरों का तो संयोग होता ही रहेगा, परंतु इससे मैं जुदा हूं, उससे एक तो है, उतने संकलेश परिणाम वहां ज्यादा हो जाते हैं मरण के समय में। भले भगवान का नाम लेता है परंतु वो अंदर ही अंदर से शरीर में हूं और मैं नष्ट हो रहा हूं, ये उसकी बुद्धि बनी रहती है। देखो इन सब समागमों को छोड़कर जाना पड़ेगा, जैसा परिणाम किया उसके अनुकूल आगे यह वैसा ही स्थान पाएगा, पूरा न पड़ेगा यहां के समागमों से। जैसे परिणाम हम देखते हैं अभी कर्णान युग में, कितनी कितनी बातें देखते हैं, कोई एकेंद्रीय में चला जाता है, कोई निगोद में चला जाता है, कोई अपर्याप्त अवस्था में चला जाता है। तो यहां जैसे परिणाम किए हैं वैसे उस परिणामों के वैसे वैसे स्वयं ही फल भोगता रहता है। कहते समागमों की दृष्टि नियम से क्लेश का कारण बनती है, दृष्टि ने उसमें अपनापन है, उससे हित मानना है। उन सब क्लेशों से निवृत्त होने का उपाय क्लेश रहित ज्ञान स्वरूप निज अंतस्तत्व में अपने उपयोग को लगाना है। जिसने ऐसा किया वह पुरुष धन्य है, इसी संबंध में गुणभद्र आचार्य देव और कह रहे हैं। देखो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप तो है ही, उसको कुछ बनाना नहीं है, तैयार नहीं कराना, उपयोग तो हर समय हमारा जानना 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 उपयोग तो चल ही रहा है, उसको भी कहीं बाहर से नहीं लाना है, अभी क्या पराधीनता है इसमें। जिसको जानना है वो मैं हम स्वयं है और जानने वाले भी हम ही है। अज्ञान आ जाता है हमने खड़ा कर दिया है, समझ में आती है बात, ये हमने अपनी क्योंकि कल्पना उनसे सुनकर हमने नक्की किया है। अभी हमें तो जब ये सच्ची बात समझ में आती है तो ऐसा लगता है, यानी हम कंपेयर अपने आप होते हैं ना, पहले तो हम ऐसा मानते थे और ये बात तो ऐसी हो रही है, तो क्या सच है, इसका निर्णय तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अन्य लौकिक चीजों में तो निर्णय करते हैं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, अपने लिए क्या भरा है। तो यहां पर भी हमारी मान्यता ऐसी थी, अब हम ये ऐसा सुन रहे हैं तो ये कौन सी सही है, इतना तो निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिसका जैसा होनहार है उसको सहज रूप से ऐसे विचार, अज्ञान है, परंतु यहाँ क्या कहा, थोड़े समय के लिए तो ये प्रैक्टिस चल सकती है, बाद में तो निरंतर चलेगी अपने आप। शुरुआत में थोड़ा अपने को, जैसे बच्चे को भी स्कूल में डालते हो तो जबरदस्ती डाल के वहां चले आते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी जबरदस्ती करनी है, परंतु वो तो एक प्रैक्टिस हो जाती है और ये विचार बारंबार आएंगे। अभी हम 89 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 24 हाँ गड़बड़ी जरा देख लेते हम 89 हाँ बोला पीछे के पेज में एक मिनट ना, मन की संताक करे, निश्चय करे, है ना, संताक छानबीन करना, ऐसे मन की संताक करे, नहीं नहीं वो नहीं है, देखो उसमें क्या लिखा उन्होंने, कि किसी कुछ समय के लिए, नीचे से चौथी लाइन, कुछ समय के लिए परद्रव्य के प्रति मोह अनुराग न जगे, विकल्प न उठे, ऐसे मन की संता करे, यानी मन में ऐसी प्रैक्टिस करे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, ऐसा आपको प्रयोग करना है, ऐसा थोड़ा जिसको हम अभ्यास करना है। संताप का एग्जैक्ट अर्थ मुझे भी पता नहीं है, परंतु प्रैक्टिस लगता है, अभ्यास प्रैक्टिस, या मन की स्थिरता करे, इस तरह से उसका अर्थ। यानी हम अपन मानते ना मराठी गोला बेरीज, यानी अनुमान करना वहां क्या हो सकता है अर्थ उसका, एग्जैक्ट शब्दशः अर्थ मालूम नहीं है। ये 89 पर जरा हम चेक करेंगे, दोनों में कुछ डिफरेंस लगता है। मध्य वृद्ध तुरुषार जितुम पशु जितुम, बिंदी तो चाहिए ऐसा लगता है। वसु पशु हु, वो पशु क्या है, पशु का पशु क्या है, क्लिश्नासी कृष्यादि भी वो वृद्धों के ऊपर चला गया। यहाँ वृद्धो वार्धमृत, वार्धिक के अर्धमृत, वो वृद्ध करके अर्धमृत हुआ है, या वार्धिक के अर्धमृत, क्योंकि बाल्य किया तो वार्धिक के करना बराबर है, यानी वृद्धावस्था में। वृद्धो वा लिखा है ना, वृद्धौ वृद्धौ अर्धमृत, वृद्धौ वृद्धौ का अर्धमृत किया तो वृद्धो वार्धमृत हो गया। अर्धमृत वृद्धो वर्धमृत हो सकता था। औ का अ किया ना आगे, व हो गया। क्व जंत फलितम, क्व जन्म फलिते, धर्मो भवे निर्मलः। वहां को जंत फलितम, जंत का अर्थ कुछ नहीं होता है, जन्म ही होना चाहिए, जन्म ही होना चाहिए, यानी जन्म लेने से क्या फायदा। जन्म करना, देखो यहाँ हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसके आधार से यहाँ जो चेंज करके लेते हम, क्योंकि ये जो ऊपर सेकंड लाइन कामिनी द्रुम घने, द्रुम शब्द एक है, द्रुम यानी वृक्ष, हाँ वो एक अर्थ एक करना, द्रुम घने। फिर तीसरी लाइन वसु पशु है, तुषार्जितुम, तू के ऊपर बिंदी, तुषार्जितुम वसु पशु पशो, ठीक पशो किया है, पशु है वहां पर, और वसु और पशु में गैप है। अभी लास्ट लाइन, वहां वृद्धो लिखा है ना, वार्धिक के और बीच में एस जैसा करके अर्धमृत, नहीं वो पूरा निकाल के वार्धिक के आपके सामने है ना लिखा हुआ, वार्धिक के बाद वो एस जैसा साइन करना, अर्धमुतम यानी वो अ उसके अंदर चला गया। चौथी लाइन में वृद्ध हुआ है ना, उसके बदले वार्धिक के अर्धमृत, तो वार्धिक के अर्धमृत ऐसा हुआ उसको। और क्व जंत फलितम, नहीं जन्म फलितम, फलितम ने वो फलित ही लिखा है, फली फलिते का अर्थ कैसे होता है, फलितम हो उसमें क्या है आपके उसमें, फलिते है,
लेकिन फली अलग निकाला है, ते अलग निकाला है और धर्मो अलग निकाला
है। धर्म तो अलग है ही।
ठीक है, जन्मो फली ते धर्मो भवे
तेने तेने वो सामने वाले को बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तम के बदले ते, अभी पूरा उन्हीं के अनुसार लिखते हैं यहाँ पर, अभी वैसे पढ़ेंगे पहले। देखो ये चौथी लाइन देखो, वृद्धो वार्धमृत है ना, वार्धिक्य अर्धमृत, जरा मुझे देना। पहले लाइन में भी कुछ गड़बड़ी लगती है। बाल्ये वेचिन किंचिदप्य रिपूर्णांगो, क्या है परिपूर्ण चाहिए, प रह गया क्या? हाँ, किंचिदप्य परिपूर्णांगो, प्य के बाद प चाहिए। पहली लाइन प्य के बाद प चाहिए, परिपूर्णांगो। किंचित अपि परिपूर्णांगो हितम वाहितम। बहुत ही गड़बड़ हो गई। चलो अभी हम पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ती मैं। बाल्ये वेचिन किंचिदप्य परिपूर्णांगो हितम वाहितम, कामांध खलु कामिनी द्रुमघने, ब्राह्म्यन वने यौवने, मध्ये वृद्ध तुषार्जितं वसुपशु क्लिष्णासि कृष्यादिभिः, वार्धिक्यैर्धमृतः क्व जन्म फलिते धर्मो भवेन्निर्मलः। ऐसे जन्म से क्या फायदा हुआ तुझे? बाल्ये वेत्सिन, वेत्स्य ने कुछ जानता नहीं है, अभी हम यहीं से पढ़ेंगे उसका अर्थ, वो तर्थ हुआ अर्थ। बाल्यावस्था विषय तो, विषय ने बाल्यावस्था में तो तू संपूर्ण अंग रहित हो, तो संता किछु भी हित व अहित को नाही जाने है। यानी तेरे यानी तो पूर्ण उसके पूर्ण हुआ नहीं ना, अभी सभी अवयव पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, ऐसा कह रहे हैं। संपूर्ण अंग रहित हो तो संता किछु भी हित व अहित को नाही जाने है। बहुरी यौवन विषय, कामिनी द्रुमघने है ना, स्त्री रूपी वृक्षनी कौ, सघनता रूप वन, ता विषय भ्रमता संता, काम करी अंध भया। यानी यौवन को वन की उपमा दी है। बहुरी मध्य वय विषय, बधी यानी बढ़ी हुई जो तृष्णा, ता करी पशु समान भार निर्वाह करणहार होत संता, धन उपजामने को खेती आदि कर्मनी करी क्लेश पावे है। यानी जिसको प्रौढ़ अवस्था में, बाल्यावस्था भी तो अभी छोटा था, कुछ समझ नहीं थी, फिर यौवन अवस्था में हाँ वो कामांध होकर उसमें भटकता रहा, मध्यवय में क्या हो गया, तृष्णा बढ़ी और पशु समान काम करता है, मानता है कि मैं पैसा कमाता हूँ, इतना धन कमाता हूँ, क्योंकि पशु के माफिक वो कष्ट करता है। कृष्यादि में खेती आदि, अभी हर एक का अपना अपना काम जो कुछ है वो समझना। बहुरी वृद्ध अवस्था विषय, आधा मृतक भया, अर्ध मृतक के समान हुआ, अभी शक्तिहीन हो गया, अन्य भी चीजें हुई। ऐसा तेरा मनुष्य जन्म है, सो फलवान कहाँ होई, निर्मल धर्म कहाँ होई, कहाँ होई ने कैसे होगा? ये ते ने तेरा मनुष्य जन्म, भावार्थ इसको को पढ़ते हैं। सर्व पर्यायनी विषय, मनुष्य पर्याय धर्म साधन को कारण है। सभी पर्यायों में कौन सा देव पर्याय नारकी तिर्यंच वगैरह, इनमें मनुष्य में ही धर्म का कहो स्वाध्याय का मुख्य साधन यहीं पर हो सकता है। बहुरी धर्म साधन ही तय मनुष्य पर्याय सफल हो है। सो तेरा मनुष्य पर्याय का काल तो ऐसे बीते हैं, कैसा बीता है वो भी वर्णन कर रहे हैं। बालकपन है तो कुछ हित हित का ज्ञान ही हो ही सके नाही। यौवन विषय तू स्त्रीनी का रसिया होए कामांध भया। मध्य अवस्था विषय कुटुंबादिक की वृद्धि भई, तहा मोह को सर्व का निर्वाह किया चाहिए ऐसा विचारी धन उपजावने के अर्थी खेद खिन्न रहे। मैंने बहुत मेहनत करता रहा। वृद्ध अवस्था आए इंद्रिय मन शिथिल होने तई आधा मृतक समान हो है। ऐसे काल बीते धर्म कहाँ सधे, मनुष्य जन्म कैसे सफल होई। तातई बाल वृद्धावस्था विषय तो बस नाही, यानी तुम्हारे वश नहीं है, वो तो अवस्था होनी है शरीर की। यौवन अवस्था व मध्य अवस्था विषय स्त्री कुटुंबादिक सौ राग छोड़ी धर्म साधन करो, ऐसे ही तुम्हारा जन्म सफल हो है। जिस किसी अवस्था में हो तो धर्म करने का ही उपदेश होता है। यहाँ तो अलग अलग पद्धति से जीवों को इसके प्रति लगाना है। नहीं तो कोई वृद्धावस्था में पहली बार सुनता है तो कहते है, मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसी बात नहीं है। उसको तो कहेंगे तू तो अनादि अनंत है, क्यों घबराता है। अब यहां से हम प्रवचन पढ़ेंगे। बाल्यकाल के क्लेश। बालक अवस्था में जब संपूर्ण अंगों से पूर्ण भी न था, कुछ हित अहित को जानता भी न था, बालक क्या जाने हित और अहित को। वह तो जलती हुई अग्नि के कण को देखकर उसे भी हाथ से उठाकर मुख से खाने का यत्न करना चाहता है। ऐसी बाल्यावस्था में हित और अहित का कोई परिज्ञान नहीं रहा है। जब जवानी आई तो स्त्री विषय काम वासना के कारण स्त्री रूपी वृक्षों से सघन वन में भ्रमण करते हुए यह अंध बना, और मध्य में जो स्थिति हुई वह तृष्णा कर व्याप्त हुई। तृष्णा करनी तृष्णा से व्याप्त हुई, एक कमाने के पीछे पागल हो गया, परिग्रह बढ़ाने के पीछे। पशुओं की भांति भार ढो ढो कर धन उत्पन्न करने के लिए अनेक श्रम कर रहा है, और उसी में अपने को बहुत बड़प्पन मानता है। इतने घंटे में काम करता हूँ, उसको कहते पशुओं की भांति। पशु भी आराम करते, दो बार जब खाना है खाने तभी मेहनत करेंगे, रात भर सोएंगे, ये तो रात में भी धन की चिंता करेगा। उनमें तो डायरेक्ट खाने की बात है ना, कोई धन कमा के रखने की बात नहीं है पशुओं में, उनकी तो चिंता कम है। हाँ, परिग्रह नहीं है और कुछ कमा के रखने की भी चिंता नहीं है। हाँ, उनके योग्य जो कोई परिग्रह होता होगा उनके, परंतु मनुष्य जैसा पागल तो नहीं बन रहा है। कोई खेती में महान श्रम करता है, कोई किसी व्यापार में कष्ट उठाता है। वृद्धावस्था में आधा का आधा शब्द ही निकल गया नीचे, उसके दो काने नीचे गए। आधा मृतक हुआ, ऐसे तेरा मनुष्य जन्म फल देने वाला कहां होए। वो होए के बाद कॉमा चाहिए। निर्मल धर्म कहां होए, सर्वत्र यथार्थ ज्ञान का आवश्यक कर्तव्य। देखिए यही सब बातें एक आत्मविवेक पाए बिना निंदा में नीत होती जा रही है, क्या करे। गृहस्थावस्था में रहकर कुछ करे नहीं क्या, खेती व्यापार सेवा कुछ भी व्यापार न करे क्या, यानी कुछ कार्य नहीं करे, ऐसे निचला बैठे रहे। ऐसा प्रश्न पूछने वाले पूछते है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या, हम इसको नहीं करे। यह तो गृहस्थ के लिए गृहस्थावस्था में हितकर नहीं हो सकता। सुनिए, गृहस्थ त्रिवर्ग का साधक कहलाता है, धर्म अर्थ काम। इन तीनों वर्गों को एक समान सेवन करे उसे सद गृहस्थ कहते हैं। कोई पुरुष धर्म धर्म को ही स्थान देना देता उसी को स्थान देता रहे। गृहस्थावस्था में न धन अर्जन की ओर दृष्टि दे, केवल धर्म ही धर्म की धुन रखे, ऐसे पुरुष को तो साधु हो जाना पड़ता है। न वह गृहस्थ रहे, धर्म अर्थ काम इन तीनों का निरादर करे, तो उस गृहस्थी की आगे निभ नहीं सकती कुछ। एक गृहस्थ जीवन वो निभा नहीं सकेगा बिना अर्थार्जन करे, उसका बैलेंस होना चाहिए कह रहे। और बिल्कुल धर्म की धुन है तो अच्छा है ना, वो तो साधु ही बन जाए, धर्म करे अच्छा है, समय दृष्टि हो जाए, वैराग्य हो जाए, मुनि दीक्षा ले तो अच्छी बात है। केवल वो उसका गृहस्थी रहकर अगर कोई धन यानी बिना धन कमाए ऐसे भी उसका निर्वाह नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तिस पर भी इतना तो कर्तव्य है ही कि निज को निज पर को पर जानकर पर वस्तुओं में हित का विश्वास न करे। ये श्रद्धा की बात है, वो तो पहले मुख्य लेना है। और निज को निज जानना है, पर को पर जानना है, और पर वस्तु से मेरा हित नहीं हो सकता ऐसा विश्वास करे। इस मध्यावस्था में तृष्णा बढ़ती है, तब यह पशु के समान भार ढोढो कर महान क्लेश पाता है। ये तो उसके अधीन है ना, इतना तृष्णा, इतना संतुष्ट रहकर जीवन यापन कर सकता है वो, अर्थार्जन भी करता है। तो हमने तो पहले के जमाने, आज के जमाने में भी हम देख सकते हैं कि ये आता है ना कि जितना कमाई हो जाती थी 100 रुपए की या जितनी कुछ उस जमाने में, तो घर में चले जाते थे, आप अपने शास्त्राभ्यास में लगे जाते थे। ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कहीं वो पहले के जमाने में तो रुपया मिलना भी बहुत अच्छा था, पूरे महीना भर में रुपये में भी काम चलता था। आज 10,000 से भी नहीं काम होगा। परंतु तृष्णा या संतोष तो यहाँ रख सकता है ना, तृष्णा से और बढ़ाओ और बढ़ाओ और धन बढ़ाओ, उससे तो कुछ उसका उससे कुछ जिसको कहते ना भला होने वाला नहीं है, तृष्णा से कुछ भला नहीं होने वाला। अज्ञानी के अवस्थाकृत बुद्धि विकलवता। जब वृद्ध हुआ यह तो अर्धमृतक सम हो जाता है। अब ये किसकी बात चले? अज्ञानी की, जिसने अपने जीवन में तत्व निर्णय किया है, तत्व सीखे है, समय दर्शन प्राप्त किया है, नहीं भी किया और तत्व का अच्छी तरह अभ्यास है। अब वो वृद्धावस्था हो या पैरालाइज पड़ा हो तो वो अपना तत्व स्वयं चिंतन कर सकता है। उस अवस्था में भी भेद ज्ञान उसका और अधिक बलशाली बन सकता है। तो यहाँ तो यह अज्ञानी की बात चल रही है। मृत अर्धमृतक सम हो जाता है, अंग शिथिल हो गए। लोग कहते हैं ना कि यह तो अधमरा हो गया। सारे मनुष्य जन्म में समस्त पनों में ऐसी दशाएं गुजरे, वह जीवन कैसे सफल होगा? निर्मल धर्म उनके कहां से उत्पन्न होगा? छड़ाला में लिखा है, ये समस्त पनों में सभी अवस्थाओं में जो उन्होंने बताया, बालपना वगैरह वगैरह सभी, छड़ाला में भी लिखा है। देखो, बालपन में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और जब वृद्ध हुआ तो अर्ध मृतक सम भयो। यही बात वहां पर भी बताइए। अब बताओ अपना स्वरूप वह कैसे लिख सकता है, लख सकता है? वहां है अपना चाहिए, अपन नहीं, अपना स्वरूप कैसे लहे रूप आपन, ऐसा कुछ है ना वहां पर छड़ाला में, ऐसे ही वाक्य है वो, कैसे लहे रूप आपन। यह सर्वथा एकांत से बात नहीं है। कोई वृद्ध पुरुष का अथवा सभी का जीवन रहा है तो वृद्ध होना ही पड़ता है। क्या सारे जीवन भर बड़े बड़े धर्म, तपस्याएं, संयम इन कार्यों में अपने को लगाए और बूढ़े हो गए तो यदि आत्म ज्ञान के अपात्र रह जाएंगे तो इस तरह फिर साधु बनने की क्या जरूरत है? आखिर बूढ़े होना ही पड़ेगा और बुढ़ापे में आत्मस्वरूप से वंचित रह जाना होगा। उसका समाधान यह है, यह सब जो कहा गया है वह ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लगाना चाहिए जिस पुरुष ने बचपन में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जवानी में कामांध रहा वही पुरुष जब वृद्धावस्था पाता है, अंग शिथिल हो जाते हैं, भीतर में जो आत्मबल नहीं बना पाया, सो वह पुरुष अब कैसे आत्मा का ज्ञान कर सकता है। एक व्यक्ति के संबंध में बात समझना, ये क्या कहना चाहते? कहते वो तो ऐसे बूढ़ेपने कोई नहीं कर सकता, तो अभी व्रत तप करने से भी क्या फायदा है, वो भी तो बूढ़े हो जाएंगे। उनकी बात नहीं हो रही है, जिन्होंने अपना पहले बचपन से आज तक वृद्धावस्था तक कुछ नहीं किया है, वो अब जाकर हम कहते ना जैसे पूर्व महापुर आ गया और अभी तैरना सीखना चाहता है, और वो भी ऐसी हालत में कि जो चल भी नहीं सकता और अभी वो तैरना सीख रहा है, ये कैसे संभव है? ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं, यानी जो किसी अवस्था में है, बच्चा है युवान है, उनके लिए ये प्रेरणा है कि तू जिस किसी अवस्था में हो अब ज्ञान कर लो। अभी ज्ञानी के अवस्थाकृत विकलवता का अभाव, हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं बच्चे पाठशाला में पढ़ते हुए, भले कहीं से बीमार हो जाए, कैंसर तक हो जाए, परंतु इतनी दृढ़ता उनकी इतनी होती है कि उसके बल पर बड़ों का अचरज में डाल देते हैं। कितनी स्टोरी सुनी हमने ऐसी। कितने तो अपने माँ बाप को फिर सिखाने लगते हैं ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, ये सब पाठशाला में बच्चे बहुत तैयार हो जाते हैं। ज्ञानी के अवस्थाकृत विकलवता का अभाव, जो पुरुष बचपन में ज्ञान प्राप्त करता है और जवानी में भी विषयासक्त नहीं होता, उसके बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में भी उसके ज्ञान धर्म उत्साह सब कुछ जरूर चमकता है। जिसने युवावस्था में धर्म की ओर दृष्टि नहीं की, वह ही पुरुष वृद्धावस्था में विचलित होता है, ये कहना चाहते हैं। नहीं तो जिसने अपने को शरीर समझा, अरे मैं अभी बूढ़ा हुआ, मैं ये कैसा करूं, मैं कमजोर हुआ, मुझे क्या होगा, यानी उसी की चिंता करता है। अपना कर्तव्य है, कोई भी उम्र हो, बचपन हो, जवानी हो अथवा वृद्धावस्था हो, जब कभी भी ज्ञान किरण जगे, अभी यही बात की थी मैंने, यानी जब कभी अभी जागे तब सवेरा कहते ना, जब कभी ज्ञान की किरण जगे, दृष्टि जगे, हमें उस आत्मज्ञान की उपासना में लगना चाहिए। मुख्य काम तो जीव का आत्मकल्याण है और गौण काम है आजीविका का साधन, ऐसा निर्णय ज्ञानियों के होता है। जो आनंद अपने आप को केवल ज्ञान मात्र निहारे रहने में होता है, वह आनंद अन्य किसी भी बाह्य विषयों की साधना में नहीं होता। देखो केवल तत्व पढ़ते समय इतनी निराकुलता हो जाती है, तो वो आत्मिक आनंद में कितनी निराकुलता, कितना आनंद सुख होगा, ये आप सोच सकते हैं ना। ऐसा जानकर इसी ज्ञान की उपासना के लिए अपना तन मन धन वचन, या कुछ भी अपना नहीं हो अपना कहा जिसको हम व्यवहार में अपना कह रहे, सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। हम कहते हैं अपना सर्वस्व अपना उपयोग है, उसी को न्यौछावर कर दो अपने आप पर, है ना, तब इनकी कुछ अधिकता नहीं भासित होती, तो वो भी करने के लिए कोई तैयार हो जाता है। मात्र धन खर्चा किया तो उसने बहुत, ये बात नहीं रही वहां पर। यदि यह आत्मज्ञान मिल सका तो समझो कि मैंने सब कुछ पा लिया। अब 90 नंबर को चेक किया है क्या आपने? बाल्यस्मिन् यदनेन ते विरचितम् स्मर्तुम च, ये स्तर्तुम हुआ है, स्मर्तुम चाहिए, स्म स्म स्मर्तुम च, वो च जुदा निकाला है, तन्नोचितम्, तत् न उचितम्। मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरै स्तन्नास्ति, इतना एकदम हो गया, स्तन्नास्ति उसको पूरना चाहिए, तो पूरा चाहिए, स्तन्नार्पितम्, स्तन्नास्ति यन्नापिता है, स्तन्नार्पितम् यत्वै लिखा है, स्तन्नास्ति यन्नापिता है, यहाँ लिखा है व्यतिकरही, मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरही स्तन्नार्पितम् यत्वै, स्तन्नास्ति यन्नापिता। देखो उसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ, यहाँ तन्नार्पितम् यत्वै लिखा है ना, वहां पर स्तन्नास्ति स्तन्नास्ति यन्नापितम् यन्नापितः तन्नास्ति एक शब्द और आगे यन्नापितः, यत्वै के बदले यन्नापितः, यन्नापितः वार्धिकेऽप्यभिभूय के बीच में वो वार्धिके अपि अ वाला वो एस डालना, अप्यभिभूय दंत दलनाद्या चेष्टितम निष्ठुरम पश्चाद्यापि विधेर्वशेन, विधेर्वशेन विधेर्वशेन ध का धे करना, विधेर्वशेन विधि के वश से चलितुम वांछस्य हो दुर्मते विधे, विधवशेन विधर्वशेन विधेर्वशेन विधेहे वशेन। पढ़ती हूँ मैं अभी 90 नंबर का, ये बाल्य पाइजे ना, बाल्य हुआ यहाँ पर, बाल्येस्मिन् यदनेन ते विरचितम् स्मर्तुम् च तन्नोचितम् मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरैस्तन्नास्ति यन्नापितः वार्धिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितम् निष्ठुरम् पश्चाद्यापि विधेर्वशेन चलितुम् वांछस्य हो दुर्मते। अर्थ इस पर्याय विषय यानी मनुष्य पर्याय की बात है, पर्याय ने इस भव में इस कर्म नहीं बाल अवस्था विषय तो तेरा किचु बुरा किया, सो याद करने योग्य भी नहीं। बहुरी मध्य अवस्था विषय धन उपार्जनाय का प्रकार नहीं करी, सो कोई दुख रहा नहीं, जो तो को न दिया। अब ये कर्म के ऊपर बात बता रहे कि कर्म ने तेरी अवस्था ऐसी बनाई कि बाल्यावस्था में तो दुखी रहा और मध्य अवस्था में भी धन उपार्जने के लिए ऐसा कोई दुख नहीं रहा कि जो तुझे नहीं दिया उसने। बहुरी वृद्धावस्था विषय भी तेरा अपमान करी, दंत तोड़ना आदि कठोर चेष्टा करी, दांत टूट जाते हैं तो कर्म ने तोड़ दिया ऐसा कहते हैं। सो तू देखी हे दुर्बुद्धि, अब भी इस कर्म का वश करी ही चलने को चाहे है, क्या ये कर्म के अधीन होकर ही रहना चाहता है? ये कहते हैं अलग अलग पद्धति से ज्ञानी जन कैसे कैसे जीवों को इसके प्रति प्रेरणा दे रहे। देखो अर्थ देखते यहाँ का, इस पर्याय विषय ये बताया मैंने, भावार्थ यहाँ का देखते हैं। लोक विषय कोई एक बार अपना बुरा करे ताको अपना बैरी जानी, वाके आधीन रहा चाहे नहीं। एक बार कोई बुरा करता है तो वो अपना बैरी जानकर उसके वश कोई नहीं रहना चाहता, वाका नाश करना ही विचार है, वाका है ना उसका, यानी उसका नाश करना चाहता है। सो इस कर्म नहीं अनादि संसार ते तो तेरा बुरा किया, ताका तो को स्मरण नहीं, क्योंकि अनादि से क्या क्या किन कौन से पर्याय में घूमा है एक इंद्रिय आदि में तो तुझे पता नहीं, अभी याद भी नहीं है। परंतु इस पर्याय विषय बाल अवस्था विषय तो गर्भ जन्म शरीर बुद्धि आदि दशा नहीं करी, और मध्यावस्था विषय धन उपार्जन आदि क्रिया नहीं करी, और वृद्धावस्था विषय धन दांत तोड़ना आदि अपमान कार्य करने करी, जो बुरा किया सो तू देखे है। इस पर्याय की बात तो तुझे याद है ना, क्या क्या तेरी अवस्था बचपन से अभी तक जो हुई है कर्म के वश होकर, वो तो तुझे दिख रही है, याद है, ज्ञान में है। ऐसे भी प्रत्यक्ष देखी, अब भी तू कर्म ही के अधीन रहा चाहे है, यानी अपना स्वरूप जुदा है उसको समझना नहीं चाहता है, तो कर्म के अधीन रहना चाहता है, या का नाश का उपाय नहीं करे है, सो यो तेरी पुरुषार्थता की हीनता तो ही को दुखदायक होसी, तुझे ही ये दुखदायक होगी भविष्य में, ये कहना चाहते हैं। अब यहाँ का बढ़ते हैं 25 पेज पर, 90 श्लोक के नीचे, प्रबल वैरी के विनाश प्रोग्राम के अभाव पर आश्चर्य। उसके विनाश का प्रोग्राम नहीं बना रहा, उसका उसमें आश्चर्य लगता है, कहते हैं कि आश्चर्य की बात है, जिसने तुझे इतनी तकलीफ दे रही और दे रहा है फिर भी तू उसी के अधीन रहना चाहता है। कोई पुरुष यदि एक बार नहीं, हाँ यही फिर दोबारा लिखा, कोई पुरुष यदि एक बार भी अपना बुरा करे तो उससे उपेक्षा तो हो ही जाती है, साथ ही उसके नाश करने का भी संकल्प कर लिया जाता है, किंतु देखो इन कर्मों से हम आपने यानी हमने और आपने अनादिकाल से नाना बुरा परिणमन किया, नाना ने अनेक प्रकार का, क्योंकि पांच परावर्तन का स्वरूप देखे तो कितने कितने कहाँ कहाँ हाँ नहीं घूमे, ये सब जगह घूम के आए, बुरा परिणमन किया करते चले जा रहे हैं, और इस भव में भी अभी बतावेंगे कि कैसे कैसे कष्ट इन कर्मों के निमित्त से मिलते हैं, फिर भी कर्मों के नाश का यह उपाय नहीं करता है। बाल्यावस्था में कर्म वृत्त उपद्रव के कर्मकृत, इस पर्याय में बाल अवस्था में इन कर्मों ने जो कुछ तेरा बुरा किया उसका स्मरण भी उचित नहीं हो पाता। बाल्यावस्था के बालकों को देखकर परख लो, न ज्ञान है, न विवेक है, न कुशलता, न वृद्धि। एक हम आपको उनकी निश्चिंतता दिखती है, पर वे भी निश्चिंत नहीं है, उनके भी क्लेश है। उनके मनमाफी कोई बात न हो सके तो वे दुखी हो जाते हैं। बच्चे जब चाहे रोते रहते हैं, उनके भी क्लेश है। विवेक तो है ही नहीं, बुद्धि नहीं है। यह तो बताने की बात है कि बच्चे कषाय रहित होते हैं। अरे क्या उनके कषाय नहीं है? जैसी कषाय बड़ों के है वैसी कषाय उन बच्चों के हैं। वे बच्चे नहीं है, वे बूढ़े होने के बाद आए हैं। नहीं समझे? हम बूढ़े मरकर यहाँ आ गए। पूर्व भव में तो बड़े बूढ़े थे, कितना कषायों का उनके पास स्टॉक था, स्टॉक, वो सब स्टॉक लेकर बचपन में आए हैं। उन्हें यों न देखना कि कषाय उनके नहीं है, पर इंद्रिया अभी पुष्ट नहीं है, वे कषायों का प्रकाशन नहीं कर सकते, पर कषाय उनके भी है। एक इंद्रिया से लेकर सबके कषाय है, अभी उन बाहर नहीं दिखता तो क्या है? अभी कोई कोमा में है, बाहर क्या दिखा रहा है, दिख रहा है आपको? कौन सी कषाय दिख रही है? शरीर के हलन चलन भी नहीं हो रही है, निद्रा भी कहा है कि तो कितने तो कषाय कितने हो गए अंदर, है ना? बाहर हमें नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल चलेगी, मन का भी कार्य चलेगा। सही कौन सा जानना? मन का भी चलेगी ना, कोई ना कोई कल्पना है वहाँ भी चलती रहेगी। हाँ भले वो कितनी जिसको कहेंगे कि विवेक पूर्ण है, क्योंकि ज्ञान की तो ऐसी भी हीनता होगी बाह्य संबंधी, हाँ परंतु ये तत्व का अभ्यास ही होगा तो वहां पर भी वो धुन चलेगी उसकी। जिसको कहते हैं ना, जो पहले से जिसका अभ्यास है, ऐसी अवस्था में भी उसकी बातें चलेगी अंदर ही अंदर, उसका घोलन कुछ ना कुछ चलेगा उसका भी। उपयोग तो है, उपयोग के बिना जीव नहीं है, वही तो कह रही ना मैं। हाँ, हाँ वो तो चलते हैं, याददाश्त बाहर की भले चले जाए, परंतु ऐसे कोई घटनाएं वगैरह होती होगी, अभी हम उसकी अनुमान तो नहीं लगा सकते ना क्या चल रहा है। ख्याल में आती है ना बात? गहरे पर उस समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं नींद में, सपनों में, ऐसी अटपटी बातें कि इसे जग जाने में हास्य लगता है जग जाने, क्योंकि हमने तो वहां न कोई माने कोई कल्पना चलती ना, मन के खेल चल रहे कि नहीं चल रहे, किसने सपने चल रहे क्या पता नहीं चलता है क्या, सपना नहीं आया तो भी अभी वो तो जैसे अभी भी वर्तमान में भी अबुद्धिपूर्वक में कहाँ आप जान रहे, बुद्धिपूर्वक तो आपके ख्याल में आ रहे, अबुद्धिपूर्वक कहाँ आ रहे, वहां पर भी चल रहे हैं सभी बातें, नहीं तो वो राग वितरागी मानना पड़ेगा। हाँ ये बात है ना, अति संकलेश होते है ना अति विशुद्धि होती है, निद्रा में या दर्शन उपयोग में वो मंद हो जाते थोड़े, क्योंकि विशुद्धि की भी जो अधिकता है संकलेश की अधिकता ज्ञानोपयोग में और जागृत अवस्था में, ये दो कंडीशन लगते हैं उसमें, वो भी संगी पंचेंद्रियों के अधिक से होगी, एक इंद्रियों की अपेक्षा संगियों में ये ज्यादा होगी संकलेश। बनते हैं ना,
आयु कर्म नहीं बनता ऐसा कुछ,
जब मध्यम परिणाम होते हैं, अति मंद और अति संकलेश परिणामों में
आयु नहीं बनती, कर्म नहीं बनते ऐसा नहीं है, आयु अति मंद और अति तीव्र में आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि उसके बंध योग्य आयु के बंध योग्य जो उनके मध्यम परिणाम होते कषाय यानी लेशाओं के अंश होते हैं, उन मध्यम अंशों में वो बनते हैं। आयु की बात वो अलग है, हो गए ना समय, यही रुकते हैं अभी हम 26 पेज पर, एक पहले हो गया, नया पैराग्राफ से शुरू करेंगे कल परसों। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।